Om Shanti and good evening to everyone. Today it's a pleasure for me to be with you all here and share some of the insights that we have on this subject of IQ, EQ, SQ. We are all very well aware that in today's world, every time whenever human being meets with any problems or any difficulties in life, then they start searching for something higher to what they have. In this world of physics, when human beings have discovered and found out so many things related to the body, but there are certain questions which are still unanswered, and that is where the search for metaphysics starts. And therefore it is said, where science ends, from there spiritual science begins. Adhyatmikta. Jiska adhyayan karne ke liye aap apne jeevan ke अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं. आध्यात्मिकता का मतलब ही है अध्ययन द्वारा उन्नति प्राप्त करना. अध्ययन. स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट, जो आत्मशक्ति के साथ जुड़ी हुई है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर नहीं है. और इसलिए संसार के अंदर एक समय था जब लोग ये मानते थे कि जीवन के अंदर अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो आईक्यू होना बहुत जरूरी है. आईक्यू के बिना कुछ नहीं होता है. इंटेलिजेंस क्वोशेंट. व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता होना आवश्यक है. लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखा गया कि जहां बौद्धिक क्षमता अधिक है तो लोगों की बुद्धि का अभिमान बढ़ता जाता है, अहंकार आने लगता है, और वो अहम जब टकराता है तो अच्छे से अच्छे सिस्टम को फेल कर देता है. आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो वह है ईगो प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है. तब महसूसता हुई कि देर इज समथिंग हायर देन आईक्यू, एंड सो द सेकंड कॉन्सेप्ट केम अप विच इज अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस. व्यक्ति के जीवन के पहलू में एक हिस्सा है जिसको कहते हैं भावनात्मक क्षमता, जो बौद्धिक क्षमता से भी ऊपर है. और इसलिए जब भावना के आधार पर लोग काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तो शायद प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हो. और इसलिए आज भी दुनिया के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में काफी डिमांड है. परंतु देखा जाता है कि जहां भावनाएं बहुत हो जाती है तो कभी कभी भावनाओं में बहने लगते हैं लोग, वो भी गलत है. भावनाओं में बह जाना, व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता को वहां यूज नहीं करता है. सोचा इसका बैलेंस जरूरी है, इसलिए ईआई ये शब्द हमारे सामने आया, इमोशनल इंटेलिजेंस. लेकिन अब महसूस होने लगा कि इन दोनों से भी कुछ और ऊपर है. और तब एक और कॉन्सेप्ट आया एमक्यू का. एमक्यू माना मॉरल क्वोशन. मॉरालिटी भी कुछ है, व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है मॉरालिटी, मॉरल क्वोशन जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे अब महसूस होने लगा है कि इन सबको मिलाने वाला एक क्वोशन है और वो है स्पिरिचुअल क्वोशन, SQ। स्पिरिचुअल क्वोशन मीन्स IQ प्लस EQ प्लस SQ प्लस MQ इज इक्वल टू SQ, जहां तीनों का बैलेंस लेकर के जीवन में चलने वाली बात है। आध्यात्मिकता धर्म से काफी ऊपर है। धर्म में हमें नहीं ले जाते, धर्म में कई प्रकार के बैरियर्स बाउंड्रीज आ गई है, लेकिन आध्यात्मिकता इन सब बाउंड्रीज से ऊपर हो जाती है। और इसलिए ये तीन क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, लाइक पीछे की बंद करे तो अच्छा रहे, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। लेकिन ये शब्द जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ मिस्टेक नजर आती है। कोई मिस्टेक है? हाँ, क्या मिसिंग है? नहीं, मॉरल तो मिसिंग है। हाँ, इंटेलिजेंस में आई कैपिटल हो गया है, उसको छोटा करना चाहिए, है ना? और उसको छोटा करने का एक ही आधार है, ऊपर एक बिंदी लगाने की जरूरत है। शायद जीवन में भी ये अहम के टकराव में आई जब बड़ा हो जाता है तब अहंकार का टकराव होता है। सो आर वी प्रिपेयर्ड टू चेंज दैट आई? आप लोग ये कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ये आई को चेंज करने के लिए तैयार हो? क्योंकि तभी कुछ प्राप्त करके जाएंगे, कुछ लेकर के जा सकेंगे, झोली भर करके जा सकेंगे। महसूस होगा जैसे झोली भर गई। जीवन में यही कहा गया है कि द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट, बट द विल टू विन इज नॉट वर्थ अ पेनी इफ वी डोंट हैव द विल टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स। जीवन के अंदर जीतने के लिए भी अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर वो तैयार करने की क्षमता ही न हो या सूझ न हो, समझ न हो, तो कभी जीत नहीं पाओगे जीवन के अंदर। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द लेंथी वॉयज वी हैव एम्बार्क्ड अपॉन दैट जर्नी विच वी कॉल एज लाइफ। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के अंदर जितना ये आय को छोटा करके चलते रहेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे जीवन के अंदर। नहीं तो प्रॉब्लम्स हर रोज नया स्वरूप लेकर के हमारे सामने आएगा। हर रोज व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं रिग्रेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा और सोचेगा कि क्या करें आगे। IQ जब हमारे सामने इसकी खोज हुई, लोगों ने जब समझा कि हाँ IQ जरूरी है, तो IQ का मतलब है कि द इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जरूरी है कि मुश्किल से मुश्किल बात को सहज रीति से हम समझ ले जीवन के अंदर, टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स बाय केयरफुल थॉट्स। जीवन के अंदर सुलझे हुए विचारों को लेकर के हम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। एंड एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग। जो भी बातें आती है, जरूर है कि कोई ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना है, लेकिन हर बात के पीछे जो तर्क है उस तर्क को भी यूज करते हुए, रीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ये जरूरी है। और ये चीज जीवन के अंदर संसार में 1904 में बिनेट और साइमन ने कुछ टेस्ट डेवलप किए जिससे व्यक्ति के आईक्यू लेवल का पता चले और उसको लेकर के इस संसार के अंदर काफी इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई। लेकिन ये सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने होता है कि क्या आज मनुष्य अपने जीवन में खुश है? क्या कहेंगे, जीवन में खुश है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी दादी जी आपसे मिलेंगे, आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी मिलेंगे आपसे, शायद आज ही आप सबके सामने शाम के इनॉग्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे। वो हमेशा एक बात बहुत अच्छी सुनाते हैं कि खुशी गायब क्यों हो जाती है। मनुष्य जीवन है, खुशी हमारी अनमोल चीज है, लेकिन ये खुशी गायब क्यों हो जाती है? जो व्यक्ति का नेचुरल नेचर, जिसमें रहना चाहते हैं हम, जिसका अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ये गायब क्यों हो जाती है? कहां गायब हो जाती है? पांच सवालों में गायब हो जाती है। जब भी कोई बात हमारे सामने आती है तो हम पांच सवाल पूछना चालू करते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ये पांच सवाल, हां, जहां तक आपका प्रोफेशन है वहां आप अगर उस बात को लेकर के पूछते हैं वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जब उस चीज को भी हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया, कोई समस्या आती है ना तो वहां भी हम ये पांच सवाल आरंभ करते हैं और उसको खोदना, बात को खोदना चालू करते हैं। और जितना बात को खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, उसके बाद खुशी रहेगी। उसमें आपको कई चीजें मालूम पड़ेगी जो मालूम नहीं होनी चाहिए थी, और उस समय फिर जब मालूम होती है तब आप यही कहते, इससे तो नहीं पूछा होता था तो अच्छा होता था, कम से कम सुखी तो, अब तो इतना टेंशन बढ़ गया है, जो नहीं जानना था वो भी जान लिया, उसके बाद नींद तो आएगी नहीं, खुशी गायब हो जाएगी। कई लोगों को हमने सुना है, अरे हमने इतनी चालाकी से उससे ये बात निकलवाई, खोद 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 कर कितना खोदना पड़ा उसको तब जाकर के ये सारी बात निकाल पाए। लेकिन बात निकालने के बाद क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई? कहीं वो खुशी गायब तो नहीं हो गई? तो समझदारी तो उसी में है कि खोद 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 करने का जो एक स्वभाव बन गया है मनुष्य का, बातों को खोदने का, उन बातों को खोदने का छोड़ दें तो खुशी बनी रहे जीवन में, है ना? वो इंटेलिजेंस कहां यूज हो रही है? वो इंटेलिजेंस जो यूज हो रही है, उससे जो मिल रहा है, उससे हमारी शांति गायब हो रही है, सुख गायब हो रहा है, संबंधों से प्रेम गायब हो रहा है, खुशी गायब हो रही है, तो लाइफ क्या रहेगी इनके बिना? सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम के बिना लाइफ क्या होंगी फिर? तो इसलिए कहा कि मनुष्य ने अपनी इंटेलिजेंस को किस दिशा में यूज किया और इसलिए प्राप्ति क्या हुई? स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, यही प्राप्त होने लगा है आज उसको। और उसका कारण क्या है कि शायद बचपन से हम बच्चों को चलना सिखाते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसको ये भी सिखाएं कहां चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, ये भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर इंसिडेंट याद आता है कि एक बार एक छोटा बच्चा था, अनाथ था, किसी गाड़ी की टक्कर लगी और उसके पैर डैमेज हो गए, फ्रैक्चर हो गए, अनाथ था। कुछ समाज सेवी वालों ने देखा तो उसको ले गए, भर्ती कराया, उसका ऑपरेशन करवाया उसके जो फ्रैक्चर्स थे वो ठीक करवाए, और ठीक करा करके उन्होंने सोचा उनकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। काफी सालों के बाद जो व्यक्ति वो समाज सेवा संस्था का मेन था, जिसने खास इस बच्चे को फ्रैक्चर ठीक कराने के लिए सारा लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसका ऑपरेशन करवाया था, उसको एक पब्लिक फंक्शन में जाना पड़ा। और वो पब्लिक फंक्शन कहाँ था, तो एक जेल में था, जेल में जाना पड़ा। तो जेल में जाना पड़ा, वो वहां गया, उसने बहुत सुंदर बातें सुनाई लोगों को, वहां के कैदियों को। जब जाने लगा तो एक लड़का उसके सामने आके खड़ा हो गया, सर आपने मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो कहा मैं वही लड़का हूं जिसकी एक गाड़ी से टक्कर हुई थी और पैर फ्रैक्चर हो गए थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और आपने सारा लोगों से पैसा इकट्ठा करके मुझे चलने योग्य बनाया था। हाँ, बोले तुम यहां कैसे? कहा शायद आपने मुझे चलने योग्य तो बना दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया कि मुझे जीवन में चलना कैसे होगा, कहां चलना होगा, ये नहीं सिखाया मुझे किसी ने, इसीलिए आज मैं यहां पहुंच गया हूं। तो शायद यही हम लोगों के साथ भी होता है कि जीवन के अंदर हम चलना सीख लेते हैं, लेकिन वो कैसे चलना चाहिए, कहां चलना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं या कोई हमें सिखाता नहीं है। कई बार कई लोग आकर के हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे आजकल हमारी सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। हम उसको एक ही सवाल पूछते हैं, आप अपने बच्चों की कितना सुनते हो? भाई पहले हमें सुनना पड़ेगा ना उनको। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वो स्कूल से आता है और टीचर की या कोई स्टूडेंट की बातें सुनाता है, हम सोचते हैं फालतू बातें कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है। वो उस चीज को बताना चाहता है कि उसने क्या किया, कैसे किसको, लेकिन हमारे लिए वो हम कहते हैं चुप बैठ, अभी फालतू बातें मत सुनाओ, सारा दिन हम काम करके आए हैं, अब उसकी बातें सुनते नहीं हैं हम। उसको जो चाहिए वो ला करके दे दिया, लेकिन उसकी बातें सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब वो बच्चा कहीं तो सुनाना चाहता है, अब आपके पास टाइम नहीं है उसकी बातें सुनने का, वो किसी फ्रेंड को सुनाता है, वो फ्रेंड उसकी बातें सुनता है, और इस तरह संग दोष में आता है। जो सुनता है उसके ऊपर उसको विश्वास होने लगता है कि ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है, ये व्यक्ति मुझे सुनता है। तो जो व्यक्ति जिसका सुनता है उसके ऊपर उसका विश्वास बनने लगता है, और इसलिए फिर वो जैसे कहता है वैसे वो करता है। और फिर जब आपको पता चलता है, आप उसको कहते हैं ये संग में जाने की कोई जरूरत थी, तब वो बच्चा क्या कहता है, अरे इसके ऊपर मुझे जितना भरोसा है ना उतना आप पे बननी है, आपके ऊपर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम। और हर बच्चे की आज क्या शिकायत है, मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। माँ बाप कई बार कहते हैं अरे सबको जो चाहिए उसको दे देते हैं, फिर कैसा टाइम चाहिए? उसकी बातें सुनने का टाइम चाहिए। भले हमें फालतू लगती है वो बातें, लेकिन शायद उसी से हम उसका विश्वास जीत सकते हैं कि उसकी फालतू बातें सुनो भले आप, लेकिन उससे उसका विश्वास जो आप पर डेवलप होता है, उसके बाद वो आपकी बात ही सुनेगा, दूसरे किसी की बात नहीं सुनेगा। लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, जो सुनेगा उस पर उसका विश्वास बन जाएगा, और इसीलिए वो अगर उसको भटका देता है तो भटक भी जाता है। भावार्थ ये कि शायद यही गलती हमारी जीवन के अंदर हो जाती है, और इसलिए उसके बाद जब दूसरा समय आया, भावनात्मक क्षमता, इमोशनल क्वेश्चन। 1990 में डैनियल गोलमेल ने इस बात को स्पष्ट किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर्स एंड अदर्स फीलिंग्स। भावनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति हम जागृत होने लगते हैं। और इट गिव्स एम्पथी, मोटिवेशन, कंपैशन एंड एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्किलफुली टू प्लेजर एंड पेन। के हर प्रकार की परिस्थिति में किस तरह बैलेंस से चलना है ये सिखाता है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसलिए आज दुनिया में ये मान्यता है आईक्यू से ईक्यू बहुत जरूरी है। अब लोग ईक्यू टेस्ट करने लगे हैं कि ये व्यक्ति की भावनात्मक क्षमता कितनी है। और देखा गया है कि दुनिया के अंदर जिन्होंने भी बिजनेस सक्सेसफुली मैनेज किए हो, उसका कारण उसका आईक्यू हाई था ये नहीं, उसका ईक्यू लेवल बहुत हाई था। चाहे वो अंबानी हो, धीरूभाई अंबानी है, भले वो इतना उस समय ये नहीं थे, लेकिन उसका ईक्यू लेवल बहुत हाई था। लोगों को समझ पाते थे और लोग भी उसकी बातों को समझ पाते थे। इसी तरह कई दुनिया के अंदर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सक्सेसफुल है, शायद उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनका ईक्यू लेवल बहुत हाई था। दूसरा ये कहा जाता है कि पर्सन्स हैविंग विलियम सिंड्रोम, दे मे हैव लो आईक्यू, आईक्यू लेवल उनका बहुत कम होता है, परंतु उनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स होती है वो एक दूसरे की भावनाओं को और खास करके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले होते हैं उनकी भावनात्मक क्षमता बहुत ऊंची होती है। वो म्यूजिक के अंदर भी उस फीलिंग्स को क्रिएट कर लेते हैं। उनका आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं था, लेकिन आज दुनिया में बहुत सफल हो गए। तीसरा कहा जाता है कि पीपल ऑफ हाई ईक्यू आर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, आउटगोइंग, हैप्पी एंड हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्वयं में भी खुश रहते हैं, खुशी से चलते हैं जीवन के अंदर, अपने आप में भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने संबंधों में भी बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ संबंध को निभा सकते हैं। और ये देखा गया है कि दुनिया के अंदर आज लोग दे आर हायर्ड फॉर देयर आईक्यू बट फायर्ड बिकॉज दे डोंट हैव ईक्यू। इतने ईगो प्रॉब्लम्स जब उनके क्रिएट हो जाते हैं तो उनको फायर कर दिया जाता है, प्लीज यू कैन लीव, यहां आपके भले आईक्यू लेवल बहुत हाई है लेकिन आप नहीं चल सकेंगे, इसलिए उनको निकाला जाता है। और वही लोग अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ईक्यू लेवल इनका बहुत लो होता है। और इसलिए कुछ समय के बाद फिर और लोगों ने उसकी सर्च को बढ़ाया कि आईक्यू ईक्यू दोनों से ऊपर भी कुछ और है, और वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअलिटी में विजडम है, इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहा गया। डैनस जोहर एंड आयन मार्शल एज अ रिजल्ट ऑफ द पायनियर वर्क हैव कम टू अर कंक्लूजन दैट द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस एंड द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज स्पिरिचुअल क्वोशन लाइक आईक्यू एंड ईक्यू। दिस इज द इंटेलिजेंस यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। ये हमारी हर समस्या के पीछे जो कारण है और उनको सुलझाने के बाद जो उसका मर्म है, उसका मतलब है, उसकी वैल्यू है, उसको बाहर ले आ सकते हैं। उसको कहा जाता है एसक्यू। और इसलिए देखा गया है कि द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एसक्यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम आईक्यू एंड ईक्यू। और वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर क्या है? आईक्यू प्राइमरली सॉल्व्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो खाली लॉजिक तर्क यूज कर सकते हैं और तर्क के आधार पर कुछ सुलझा सकते हैं. ईक्यू अलाउज अस टू जज द सिचुएशन वी आर इन एंड बिहेव एप्रोप्रिएटली. लेकिन एसक्यू अलाउज अस टू आस्क इफ वी वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस. क्या जरूरी है हमें वहां रहना? कहीं हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? जैसे कहा कि खोद खोद करके निकालते क्या है. तो क्या जरूरी है वो खोदना? एसक्यू अलाउज अस टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या जरूरी है. आईक्यू एंड ईक्यू आर सेल्फिश ओरिएंटेड एंड इट रिलेट्स टू द कैपिटल आई, जहां ईगो सेटिस्फाई करने की बात है, उस आई को सेटिस्फाई करने की बात है. बट एसक्यू इज प्योर इंटेलिजेंस विदाउट लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट. इतनी प्योर इंटेलिजेंस है, उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि, स्वार्थ नहीं होता है, उन सबसे ऊपर उठता है, वो है एसक्यू. और इसलिए उसके कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यू आर फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन. कहा जाता है इस दुनिया के अंदर कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, भीतर से ही आना चाहिए सेल्फ. और वो तब आएगा जब सेल्फ अवेयरनेस हो, जागृति हो. बहुत सुंदर एक उदाहरण याद आता है मुझे कि एक बार एक गुरुजी थे और उस गुरुजी को अपने तपस्या आगे करने के लिए हिमालयस पर जाना था. उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो, मुझे अपनी आगे गहन तपस्या करने के लिए जाना है और मैं चाहता हूं कि मेरी एब्सेंस में तुम ये आश्रम अच्छी तरह संभालो. शिष्य ने कहा ठीक है, मैं संभालूंगा. गुरुजी ने कहा कल का दिन मैं यहां हूं, परसों सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा. अगर तुम्हें कुछ पूछने की आवश्यकता लगे तो कल का दिन है, तुम मुझे पूछ सकते हो, कोई भी तेरी क्वेरीज हो आश्रम चलाने के लिए या कोई बात के लिए. लेकिन याद रहे कि कल मेरा मौन है, फिर भी अगर आपने कुछ पूछा तो मैं लिख करके जवाब दे दूंगा. शिष्य ने कहा ठीक है. दोनों रात को सो गए, सुबह उठे, गुरुजी का तो मौन था. शिष्य ने सोचा कम से कम मैं गुरुजी से इतना तो पूछ लूं कि उनकी एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, कौन सी बात अटेंशन में रखनी चाहिए. वो गया गुरुजी के पास. गुरुजी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? आप लोग में से कई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है इसलिए मैं आपको ये बात सुना रही हूं. गुरुजी ने कागज और कलम उठाई और उस कागज के ऊपर एक शब्द लिख दिया, अवेयरनेस, और उसको दे दिया. शिष्य ने देखा, अवेयरनेस दैट्स ऑल, माना आए मुझे जागृत रहना चाहिए, गुरुजी का भाव ये है, बस इतनी सिंपल सी बात है आश्रम चलाने के लिए. वो उस कागज को लेकर के बाहर आया कुटिया से. बाहर आने के बाद बार बार उस कागज को देखे, बार बार देखे उसको, और जितनी बार देखे और सोचे उतनी बार उलझता जाए. गुरुजी ने आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं, कम से कम कुछ आगे कुछ पीछे लिख देते थे. वो फिर से गया गुरुजी के पास कि गुरुजी माफी चाहता हूं, आपने आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं, कम से कम कुछ आगे कुछ पीछे तो लिख दीजिए. गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा. आगे जो शब्द जोड़ा था वो भी अवेयरनेस था, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था. अवेयरनेस, 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 शिष्य को जब हाथ में मिला वो कागज, इसका मतलब गुरु जी कहना चाहते कि मुझे जागृत रहना चाहिए, टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। करके वो कुटिया से बाहर आ गया, बाहर आके फिर वो कागज को बार बार देखे, बार बार जितनी बार देखे उतनी बार उसके अंदर जैसे प्रश्न कॉम्प्लेक्स होता जाए। फिर उसने सोचा कि गुरुजी ने आगे पीछे भी लिख दिया वही शब्द, लेकिन ये अवेयरनेस 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 इज इक्वल टू व्हाट, ये तो स्पेसिफाई करना ही चाहिए गुरुजी को। वो फिर से वो कागज लेके गुरुजी के पास गया, गुरुजी अवेयरनेस 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 इज इक्वल टू व्हाट, कैन यू प्लीज डिफाइन। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, इज इक्वल टू अवेयरनेस। ये एक शब्द के अंदर गुरुजी की बहुत गहन बात समाई हुई थी कि उसको हर वक्त आश्रम चलाने की एक जिम्मेवारी ऐसी चीज है कि कहां जागृति नहीं चाहिए, वो जो सोचता है उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पर जागृति चाहिए। ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ थॉट्स ही जनरेट्स, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्पीच दैट इज गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट इज गोइंग टू हैव, है ना। अवेयरनेस कहां नहीं, सोचने में, बोलने में, भावनाओं में, वृत्ति के अंदर, एटीट्यूड के अंदर। He has to be constantly aware of the attitude he is trying to adopt. उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वहां जागृति। उसका कर्म का क्या है, व्यवहार क्या है, हर जगह जागृति। अगर जागृति खत्म हो गई तो he is a great failure. ये इस बात का भाव है। Components of SQ, first is सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन, कि जब आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी की बात आए, लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मोटिवेशन के दो शब्द कहने वाले कोई नहीं होंगे, पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं रहेगा, फ्लैटर करने वाले मिल जाएंगे लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जितनी सेल्फ अवेयरनेस हो, और शायद आध्यात्मिकता यही सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करती है, इसीलिए ये पहला कंपोनेंट हो जाता है उसका। दूसरा कंपोनेंट है उसका इमोशनल मैनेजमेंट, जिसके साथ हम है, भावनात्मक रूप से भी हमें एक दूसरे के साथ मैनेज करते हुए ही तो चलना है, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आत्म जागृति नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स आल्सो, इसको भी मैनेज करना है। और चौथा कहा, दूसरों की अच्छाइयों के विषय में, दूसरों के जो भी अच्छे काम है, दो शब्द अगर हम अच्छाई के बोल सके, शायद आगे की यात्रा में हमें वो शब्द किस न किसी रूप से वापस मिलने वाले हैं, किसी न किसी रूप से हमारे सामने आने वाले हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे, तो बहुत सुंदर ये है, मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी है। ये शब्द को अगर अलग करेंगे हम, तो मैनेजमेंट शब्द के अंदर मैन इज अ जेम, isn't it? Man is a gem. और ENT, ENT सर्जन की बात नहीं है, लेकिन ENT माना, E stands for enlightenment. जब व्यक्ति अपने आप में एक हीरा होता है तो वो दूसरों के अंदर भी ये enlightenment को ले आता है, आध्यात्मिक जागृति को ले आता है। N माना नेचर, हमारा जो स्वभाव है, नेचर है, वो नेचर किस प्रकार का है। और टी का मतलब है कि जो हमारे अंदर नेचर है। आप कल सुबह के सत्र में आत्मा के लेसन में समझेंगे कि आत्मा का निज स्वभाव कौन सा है, निज स्वरूप कौन सा है, और उस निज स्वरूप के आधार से कैसे हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है, कैसे हम एक दूसरे के साथ आगे चल पाएंगे, भावनाओं को मिलाते हुए चल सकेंगे। और टी माना ट्रांसफर आवर सेल्स टू न्यू संस्कार, के भीतर से एक परिवर्तन। जब आत्म जागृति वो एनलाइटनमेंट आती है, उस नेचर को हम पुनः जागृत करते, हमारी ओरिजिनल नेचर को, जो नॉलेज प्योरिटी लव पीस हैप्पीनेस ब्लिस एंड पावर इसके आधार पर है, उसको जागृत करते हैं तो हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और नए संस्कारों को ले आना हमारे लिए स्वाभाविक होगा। देखा गया है हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आर टू बी एक्सपीरियंस्ड, ये कहा जाता है। वी मे टॉक एंड रीजन ऑल आवर लाइव्स बट कैनॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ ट्रूथ अनलेस वी एक्सपीरियंस इट आवर सेल्फ। जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है, कितना भी व्यक्तियों के पास ज्ञान हो, भंडार हो, लेकिन उस चीज का अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता हमें वो क्षमता देती है उसको अनुभव करने की, उस अनुभव में जाने की क्षमता प्रदान करती है। और इसलिए उसका बेसिस क्या है, तो बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वी आर एसेंशियली स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्राइंग टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बाय आस्किंग सर्टन फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, हम कौन है, हमारा वो रियल स्वरूप क्या है। दूसरा है वेयर एम आई गोइंग, जीवन के अंदर हमारी मंजिल क्या है, कहां जा रहे हैं। और तीसरा है व्हाट डू अदर्स मीन टू मी, दूसरे मेरे लिए क्या मायने रहते हैं, उनका मेरे जीवन के अंदर क्या महत्व है। इन बातों को, ये तीन सवाल, और उसमें ये पहला सवाल हु एम आई, सिंस एजेस, सदियों से ये बात अभी तक मनुष्य के सामने है, ये सवाल हरेक के सामने है, कौन है हम। बाह्य स्वरूप से व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल है, क्या जानना है। मैं समझती हूं इंडियन कल्चर के हिसाब से बचपन से ही हमें जो संस्कार मिलते हैं माता पिता से, ये तो हरेक को बताया जाता है कि ये शरीर एक चोला है और उसमें एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, ये तो सभी जानते हैं, और क्या जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उसको जानकर फायदा क्या। चलो आत्मा का ज्ञान है नहीं है, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ, कुछ प्राप्ति होगी अगर नहीं जाना तो कोई नुकसान होगा। क्यों जानना चाहे, आज की जेनरेशन को अगर हम कह दें क्यों, उनका सबसे पहला सवाल क्यों। वो बात याद आती है महाभारत की कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि बार बार भगवान से विनती करने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, फिर ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर उसको भरोसा नहीं रहा, क्या कहेंगे। इस डिप्रेशन वाली स्थिति क्यों थी उसकी, ये फियर क्यों था उसको, न आत्मविश्वास कम हुआ था न भगवान पर विश्वास कम था। और उस समय उस मनस्थिति से बाहर निकालने के लिए सबसे पहला ज्ञान दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको कौन सा दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। चौथे अध्याय में परमात्मा ने अपना परिचय दिया, छठे अध्याय में उसको ध्यान योग बताया, राजयोग सिखाया, और धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में परिवर्तन आने लगा और मोटिवेट हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है, याद रखिए, जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हमें कई युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कई संघर्ष करने पड़ते हैं। जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति थक जाता है, उदास हो जाता, निराश हो जाता है, और भगवान के सामने जाकर यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक, अब नहीं करना है मुझे युद्ध। ऐसे समय पर ही ये आत्मा का ज्ञान मोटिवेट करने का एक साधन बन जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान ही उसको मोटिवेट कर सकता है, उसको उस डिप्रेशन वाली स्थिति से बाहर ले आ सकता है। तो आध्यात्मिकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसलिए यही सिखाया गया है कि ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन जब कहते हैं, ह्यूमन मींस ह्यूमस, सॉइल, बॉडी, एंड बीइंग इज द सोल, द सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, and life means the communion between the soul and the body. Mind body medicine conference है आपकी, और ये communion की real understanding आपको इस conference में मिलेंगी। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर की वास्तविकता ये पांच तत्व है। ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा। पानी चाहिए, क्योंकि 60-70% ऑफ दिस बॉडी कंटेन्स वाटर, 80% द ब्रेन कंटेन्स वाटर, इसलिए पानी चाहिए। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है, एक्सेस नहीं पीता, कल के लिए चलेगा। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही शरीर की आइडेंटिटी है, यही शरीर बना है जिससे। इस तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी शरीर में जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए, जीवन जीने के लिए आत्मा को भी कुछ चाहिए। क्या है वो आत्मा? शरीर माना ये पांच तत्व, तो आत्मा की रियल आइडेंटिटी कौन सी है? इसलिए कहा जाता है द ग्रेटेस्ट क्राइसिस इन टुडेज वर्ल्ड इज आइडेंटिटी क्राइसिस। व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूला हुआ है, और आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण ही इंप्लीमेंटेशन पैरालाइसिस है। बहुत कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी रियल आइडेंटिटी का पता ही नहीं है उसको। इतना ही हम जानते हैं कि शरीर के अंदर एक चेतन शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, इटर्नल है, बस। और जो शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन चलता है, शरीर से निकल जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल वी नो अबाउट इट। लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? शरीर कंसिस्ट ऑफ द फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये फिजिक्स ने बहुत अच्छी तरह हमें सिखाया है, लेकिन आत्मा की रियल आइडेंटिटी क्या है, ये मेटाफिजिक्स, ये स्पिरिचुअलिटी हमें देता है। इसीलिए ये सवाल है, Who am I? क्या है मेरी रियल वास्तविकता? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या है मेरी वास्तविकता, जीवन का मतलब क्या है, ये सारे सवाल जो खड़े हैं ना हमारे सामने, या बच्चे भी कि क्यों पैदा हुए हम, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, क्या मकसद था उसका ये दुनिया बनाने का, कि दुखी करने के लिए बनाया इंसान को, कितने सवाल है विच इज कनेक्टेड टू द सोल, आत्मा से रिलेटेड है, अनआंसर्ड। और मां बाप भी जब ये सवालों का जवाब बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो क्या कहते हैं, बेकार के सवाल कहां से वो ले आता है तुम, तुम्हारे जीवन का मकसद है पढ़ाई करना, पढ़ाई कर, तुम्हारा जीवन का मकसद है तुमको डॉक्टर बनना, तुम्हें ये बनना, तुम्हें वो बनना, उसको हम गोल बता देते हैं, बाकी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई तुम ऊपर जब भगवान के पास जाओ तो पूछ लेना, यही जवाब देते हैं जब मां बाप को मालूम नहीं, क्योंकि मां बाप खुद ही नहीं जानते हैं, तो यही जवाब देंगे। तो वो आत्मा की वास्तविकता क्या है, आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज, सतो गुणी, सात गुण, ये आत्मा की वास्तविकता है। वो सात गुण कौन से हैं, सबसे पहला गुण है नॉलेज, इसीलिए बचपन से हमें यही सिखाया जाता प्रार्थना में, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, है ना, ज्ञान। आज विज्ञान चरम सीमा पर है परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, ज्ञान ये मेरी वास्तविकता है, और इसीलिए शायद जीवन में हमेशा ये क्वेस्ट बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, जानने की जिज्ञासा, हर बात में एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, वहां से ये सवाल शुरू हो जाते हैं, हर चीज के पीछे जानने की एक जिज्ञासा हमारी बनी रहती है, ज्ञान। लेकिन आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार, ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ, ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप अहम है। ये ज्ञान क्या करता है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, क्यों चाहिए, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान इस ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ईगो के कारण कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, ईगो के कारण कितने रिलेशनशिप्स टूटने लगी है, परिवार टूटने लगा है, यह आध्यात्मिक ज्ञान ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है, सो दैट वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप खत्म हो जाती, संबंध अच्छे होने लगते हैं, है ना, और कई बातें हमें समझ में आने लगती है, इसीलिए ज्ञान चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ शुद्धि, प्यूरिटी, क्योंकि यही आत्मा का तेज विकसित करती है, इसीलिए चाहिए। कई बार देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है, अगर उनसे पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी क्या हुआ, कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था, बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम, सो वेयर आर वी कंफर्टेबल, जहां प्योर फीलिंग्स हो, जहां प्योर थॉट्स हो, जहां पवित्र व्यवहार हो, है ना, जहां भावनाओं में शुद्धि, विचारों में शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि है, वहां कंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए शुद्धि चाहिए, तभी तो भजनों में लोग गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना, लेकिन भगवान कहते हैं कब तक, ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक का साइन किया है कि तुम मैले होते रहो और मैं साफ करता रहूं, कब तक है? उसका जवाब नहीं है। जहां ये दोनों चीज है, अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्यार ही तो चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्ग के साथ भी कोई प्यार से व्यवहार करता है तो उनको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा? प्यार चाहिए हर एक को। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करते, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। देखो यही भगवान से मांगते रहे, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो ये मांगा, मैली चादर ओढ़ के आया तो साफ करना मुझे, समझ रहा है मैं मैला हूं, इंप्यूरिटीज बहुत है मुझ में और मुझे प्योरिटी चाहिए, ये भी समझता है। इसलिए भगवान को कहते तू साफ कर देना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बस एक बूंद मिल जाएंगे ना, जीवन जीने के लिए बहुत है, है ना? जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो भावनाओं में, विचारों में, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज की दुनिया की विडंबना तो देखो, कि आज की दुनिया में कोई प्यार से बात करता है ना तो भी टेंशन होने लगता है। भाई क्यों टेंशन हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो? कहते ये इतना प्यार से जो बोलने लगा है, अरे प्यार से ही बोल रहा है, नफरत से तो नहीं बोल रहा है, फिर टेंशन में क्यों आना चाहिए? तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं, उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है ना, ये प्यार नहीं है, जरूर कोई मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है, अब कौन सा स्वार्थ है। लेकिन जहां ये तीनों है वहां तो शांति, मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, वहां शांति होंगी। और यही शांति तो हमें जीवन में चाहिए, और यही शांति नहीं है जीवन के अंदर। और जहां ये चारों चीज है वहां जीवन में सच्चा सुख है, नहीं तो डनलप के गद्दे पर सोने पर भी चैन नहीं है, चैन की नींद नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते, हमको मन की शांति देना, सुख देना, हे प्रभु मेरे मन को सुख दो। जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। क्यों उसको कहा सर्वोच्च प्राप्ति? क्योंकि हर चीज का ऑपोजिट मिलेगा लेकिन आनंद का ऑपोजिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आनंद ये स्पिरिचुअल वर्ड है और स्पिरिचुअल वर्ड का ऑपोजिट नहीं होता है, वो अल्टीमेट फीलिंग होती है, उसका ऑपोजिट होता ही नहीं है। इसलिए कहा सर्वोच्च प्राप्ति आनंद। आज आनंद तो छोड़ो, जो बेसिक खुशी है ना वो भी गायब हो गई। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है बड़े शहरों में, घर में वो हंस नहीं पाते। घर में अगर हंसने लगे, हमारी नेचुरल नेचर है खुश होना, लेकिन उस नेचुरल नेचर में हम रह नहीं पाते। अगर कोई रहने लगा, हंसने लगा तो क्या कहते हैं, पागल हो गया है, क्या हो गया इसको, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो उसको, साइकिक हो गया है ना, कितनी सी बातें करने लगते हैं। खुश रहना चाहता है इंसान, आनंद में रहना चाहता, इसलिए एक दूसरे को पूछता रहता है, खुश खैराफत जब पूछता है तो क्या कहते हैं, आनंद मंगल हो, तो क्या कहते, अरे कहां आनंद कहां मंगल, ना आनंद है ना मंगल है, आनंद हो तो मंगल हो, आनंद ही नहीं है तो मंगल कहां से होगा। इसलिए ना आनंद है, फिर भगवान से रोज प्रार्थना कर, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है, मुझे भी थोड़ा वो सत्य चैतन्यता आनंद दे दो, क्योंकि व्यक्ति के अंदर की चैतन्यता तभी प्रकट होती है जब वो आनंद में होता है। इसलिए कहा सत्य स्वरूप सत चित आनंद, सत्य स्वरूप हमारा यही है, दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। लेकिन उस रियल आइडेंटिटी से हम बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर हो गए, खुश नहीं रह पाते हैं, आर्टिफिशियल स्माइल अपने चेहरे पर ले आते हैं, नेचुरल स्माइल भी नहीं आ पा रही है ना? और डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट को कहते हैं खुश रहो, तुम जितना खुश रहेंगे ना जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बेचारा कैसे खुश रहे ये नहीं बताया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता है। इसलिए कहा वहां तक तो कह देते हैं, उसके आगे की बात तुम अपनी सर्च करो, ये है तेरी क्वेस्ट, ढूंढो इन चीजों का जवाब तुम खुद ढूंढो, क्योंकि हमारे पास तो उसका जवाब है नहीं। है नहीं है, है? अभी 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना, 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति विल पावर है, और यही चाहते हैं, निर्बल को बल दो भगवान, शक्तिहीन को शक्ति दो भगवान। कौन सी शक्ति चाहिए किसी से लड़ाई करने की? आत्मशक्ति चाहिए, विल पावर, हर संघर्ष में आगे बढ़ने की एक शक्ति चाहिए, हर संघर्ष को पार करने की शक्ति चाहिए। शायद यही शक्ति की चाहना अर्जुन को भी थी, इसीलिए भगवान को 18 अध्याय का ज्ञान देना पड़ा, और उस 18 अध्याय में यही आत्मा की वास्तविकता को समझाने का प्रयत्न किया कि यही तेरी वास्तविकता है, जस्ट बी विथ योर सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ चले जाओ। मेडिटेशन ध्यान क्या चीज है? इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, उस रियल आइडेंटिटी में जाकर के स्टेबिलाइज हो जाना, यही यही मेडिटेशन है। अभी थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे उस आत्मा की वास्तविकता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करेंगे। जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमने देखा, ट्राई टू फील द क्वालिटीज, हमारी अपनी है ये रियल आइडेंटिटी है हमारी, हमारा अपना नेचर है यही, इस नेचर में हम अपने मन को स्टेबलाइज करें, और जैसे जैसे कॉन्टेम्पलेट करेंगे उसको महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। विचार मैं आपको देती जाऊंगी, जस्ट ट्राई टू गो इनटू दोस फीलिंग्स, और लेट रीजेनरेट दैट एनर्जी विद इन, भीतर ही उस शक्ति को जनरेट करें हम। ये 7 गुणों की एक शक्ति है, और वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, 7 गुण स्वरूप। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्टेबिलाइज करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, एक दिव्य ज्योति स्वरूप के रूप में। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा दिव्य ज्योति पुंज हूं, शरीर से अलग हूं, मालिक हूं। शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर, और महसूस करते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। मेरे चारों ओर उस पवित्रता के प्रकाश का ओरा है। उस प्रभा मंडल में स्वयं को देखो, कितना सुंदर स्वरूप है। और कुछ समय के लिए मन को बाह्य सभी बातों से शांत कर ले। और शांत स्वधर्म को महसूस करिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। धीरे धीरे महसूस करती हूँ शांति के वाइब्रेशंस को। शांति की शक्ति को ये शांति की शक्ति मन को रिलैक्स कर देती है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है, आनंद है। शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। यही मेरा सत्य स्वरूप है, यही मेरी चैतन्यता है, आनंद स्वरूप। एकदम लाइटनेस फील करती हूँ, हल्कापन। जैसे फ्लोट हो रही हूं, कितना सुंदर अनुभव है ये। यही मेरा असली स्वरूप है। यही सतोगुण की शक्ति है। इस सतोगुण की ऊर्जा को मैं स्वयं में विकसित करती हूँ। कुछ क्षण के लिए इस दिव्य सतोगुण को महसूस करती धीरे धीरे वापस शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय पर अधिकार प्राप्त कर अब इस ऊर्जा को सारे शरीर में प्रवाहित करना है। हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करना है, अपने संबंधों में प्रवाहित होने देना है, कर्म में, व्यवहार में उसको प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
उषा बहन जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। एक बार वापस करतल ध्वनि से उनका हम धन्यवाद करेंगे। अगर मैं पूरे प्रेजेंटेशन को एक शायराना अंदाज में प्रेजेंट करूं, सो व्हाट शी वाज रेफरिंग टू वाज, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। रूह का जिस्म से था अजीब नाता, रूह का जिस्म से था अजीब नाता, तमाम उम्र साथ रहे लेकिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात नहीं। थैंक यू दीदी, आपने हमको बहुत अच्छी तरह हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में अवगत कराया। फ्रेंड्स, लेट मी पुट ऑन रिकॉर्ड आवर सिंसियर थैंक्स एंड अप्रिसिएशन टू द मेडिकल विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज for having given us this opportunity for the next 8 minutes to showcase Brahma Kumaris ke medical wing ke under mein ek special interest group karke bahut sare special interest groups hain un usme hum logon ne ek project liya jiska naam rakha divine garbh sanskar jo neev hota hai ek bacche ka with 9 months of pregnancy hota hai so this project is primarily directed towards the mother and the baby wherein through the power of meditation, Raj Yoga meditation, positive thinking, emotional intelligence, और हमारा objective ये है कि माँ भी बहुत healthy रहे, बच्चा भी बहुत healthy रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा important हो बच्चा emotionally बहुत intelligent हो, जिससे कि वो जीवन भर अपने जीवन के challenges को बहुत अच्छी तरह उसको handle कर सके। So under this project, हम लोगों ने ये project शुरू किया है। This is a small audio-visual presentation for the next 8 minutes. हमारा आपसे एक बहुत अच्छा नम्र निवेदन है. इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट. इसको बहुत अच्छी तरह देखिए एंड वी सॉलिसिट योर सजेशन, योर आइडियाज दैट हाउ टुगेदर वी कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवाइन गर्भ संस्कार सो दैट व्हेन एन एक्सपेक्टेंट वुमन अंडरगोज दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम वी कैन एंश्योर दैट द मदर एंड द बेबी इज वेरी हेल्दी एज वेल एज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंस. आई वॉन्ट यू टू स्पेयर फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स टू सी दिस पर्टिकुलर ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन. थैंक यू. ओम शांति.
एक दिव्य शक्ति है. तू इस धरती पर मुझे लाए आई. तू मुझे सुंदर बुद्धिमान तंदुरुस्त और खुशहाल जीवन दी. तेरी भूख मुझे नौमान तक सींचे. तू ही मेरा रूप रंग, तू ही मेरी पहचान. मेरा संसार कैसा होगा ये सब तुझ पर निर्भर. मां तुम्हें मेरी रचयिता, तू ही मेरा संस्कार.
बच्चे का सारा व्यक्तित्व डिपेंड करता है द 9 मंथ्स विच द मदर इज कैरिंग द बेबी.
मातृत्व भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है.
कैसे प्रकृति एक सुंदर से बच्चे को इस धरती पर लेकर आता है और इस रहस्य को जानने के लिए डिवाइन गर्भ संस्कार की ये पेशकश हम आपके सामने लेकर आए हैं.
एक ऐसा विज्ञान जिससे गर्भ में पल रहे शिशु में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गुण विकसित होते हैं. डिवाइन गर्भ संस्कार का उद्देश्य विश्व में दिव्य एवं सर्व गुण संपन्न व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो एक नए विश्व रचना की आधारशिला बने.
वंस गॉड वॉज बींग इंटरव्यूड, मैन आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू गॉड. ओ गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? God gave a very sweet reply. He said, life is an opportunity to find meaning. Divine Garbh Sanskar hame ek opportunity deta hai uske piche ke ek arth ko samajhne ke liye. Ek chote se bacche ke sanskar ko banane ke liye 3 log bahut important hai. Number 1 is mother, number 2 is father and number 3 is teachers. To as parents, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टीचर, ये हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार कैसे दे सकेंगे.
शिशु का जन्म एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं. माता पिता के बीच एवं दिव्य संकल्प से ही एक जीवन का निर्माण होता है. यही सही समय है कि गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाए, सही संस्कार दिए जाए. प्राचीन ग्रंथों में भी गर्भ संस्कार का उल्लेख किया गया है. महाभारत हो, गीता हो, बाइबल हो या फिर कुरान. वैसे हम सब अभिमन्यु की कहानी तो जानते ही हैं. आज मॉडर्न साइंस भी गर्भ संस्कार के इस विज्ञान को मान्यता देता है।
ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, आज के बच्चे कल देश के भविष्य हैं। The children of today, they are the leaders of tomorrow. इससे दोस्तों ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को राइट इनपुट दें। और ये विशेष दो इनपुट, एक है अच्छी स्मरण शक्ति और दूसरा है शक्तिशाली मन। हम ये भी महसूस करते हैं कि ये सभी इनपुट्स अगर बच्चों को गर्भ के समय पर ही दिया जाए, देन वी आर श्योर वी आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स।
गर्भावस्था हर माँ के लिए एक सुखद यात्रा हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिवाइन गर्भ संस्कार हर स्त्री को वो सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देता है। इस अवस्था में एक स्त्री को न केवल अपना बल्कि गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन का भी ध्यान रखना होता है। इट इज वेल सेड दैट अ हेल्दी मदर गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड।
जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है उसके मन में यही विचार आते हैं, क्या मेरे पूरे 9 मंथ्स जाएंगे, अबॉर्शन तो नहीं होगा। और जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है ये स्ट्रेस रहता है कि क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिजेरियन तो नहीं होगा। और ऐसे विचारों से गर्भवती महिला अपना आत्मविश्वास खोती है। शी इज नॉट फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड। और इसीलिए डिवाइन गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही है टू मेक एवरी प्रेग्नेंट लेडी फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड सो दैट वी कैन हैव बेबी हु इज फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड। और इसीलिए साथ साथ हम 9 मंथ्स का पूरा समय विनिमय अच्छे से अच्छे विनिमय करते हुए गर्भ के ऊपर ऐसे अच्छे से अच्छे डिवाइन दिव्य संस्कार करें ताकि आने वाला हमारा बालक डिवाइन हो, तेजस्वी हो, दिव्य हो, सर्व गुणों से सर्व विशेषताओं से संपन्न हो।
गर्भावस्था के दौरान सही एक्सरसाइज रूटीन भी जरूरी है। आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और माँ और बच्चा दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डिवाइन गर्भ संस्कार एक गर्भवती को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन प्रदान करता है।
यह डिवाइन गर्भ संस्कार एक प्रयास है कि इस सुंदर से इस जर्नी को लेबर पेन से हम लेबर प्लेजर में कन्वर्ट करें। जो चिंता, जो अनिश्चितता, जो भय माँ को इन 9 महीनों में या फिर गर्भ के डिलीवरी के समय होता है, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से एक सुखमय, शांतिमय और शक्तिशाली प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करें।